शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।
शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।
जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं।
ओम शांति। कर्मों की घुये गति, आप सभी जानते हैं। बाबा हमें समय समय पर मुरलियों के द्वारा कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझाते रहते हैं। वो कर्मों की बहुत ही गुह्य गति के बारे में समय समय पर मुरली में बताते रहते हैं। बहुत सारी मुरलियां भी चली है कर्मों की गुह्य गति के ऊपर। कैसे कोई बचपन से ही बीमार पैदा हो जाता है, गर्भ से ही बीमार पैदा होता है, और थोड़ा सा भी गलती ना करने पर, उनका खान पान भी बहुत सादा होने पर भी, जीवन बहुत सरल होने के बाद भी उनको तरह तरह की बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आप देखते हैं समाज में, अपने घरों में भी देखते हैं, पड़ोसियों में, दोस्तों में भी देखते हैं, कई लोग सब कुछ करके भी खुश रहते हैं और कई लोग सब कुछ अच्छा करके भी बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं ना। और स्पेशली ब्राह्मणों में देखें अगर, तो ब्राह्मणों के बहुत हिसाब किताब हो जाते हैं ना। देखते हैं आप अपने भी जो सीनियर बीकेज होते हैं उनमें भी देखते हैं, तरह तरह के रोग आ जाते हैं, तरह तकलीफें आती हैं, कितनी बीमारियां आ जाती हैं। तो कई बार मन में प्रश्न उठता है, इन्होंने तो इतनी योग तपस्या करते हैं तो भी इनको इतनी बीमारियां क्यों आ जाती हैं, इतने दुख क्यों आ जाते हैं। आपको भी कभी कभी उठता होगा, उठता है कभी कभी आपके भी अपने अपने। देखो आप जो आप अपने घर में रहते हो, आपको जितनी परेशानियां और दुख आते हैं और आपके साथ में जो ज्ञान में नहीं चलते हैं ना, आपके घर वाले होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनको ज्ञान में ना चलने के बाद भी, सब कुछ गलत करने के बाद भी ऐसा लगता है कि इनको तो बहुत सुख है, हमें दुख हो रहा है। नहीं होता ऐसा, होता नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों है, क्या है कर्मों की गुह्य गति, क्या कर्मों का क्या हिसाब किताब है, कैसी। बाबा भी कई बार मुरली में कहता है, बच्चे सारा मदार कर्मों पर है, तुम्हारे कर्म कैसे हैं कर्म के अनुसार ही तुम्हें ये जो जो भी दुख सुख मिलते हैं, फल का उसका फल जो है इसके रूप में मिलता है। तो आज हम इसी बात को बहुत गहराई से समझेंगे कि क्या बाबा की मुरलियों से उदाहरण लेते हुए साथ साथ कैसे हमारे रोज के हमारे जीवन में किस तरह से हम देखते हैं और कैसे हमारे कर्मों को हम कैसे परिवर्तन करें। और साथ साथ आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बहुत ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, कोई मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। उस आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, कौन सा कर्म हम कौन से जन्म में करते हैं, कौन से जन्म में जाके उसके 20 जन्म के बाद, 30 जन्म के बाद, 10 जन्म के बाद उस कर्म का हिसाब किताब, कैसे वो फाइल हमारी निकल जाती है और वो व्यक्ति हमारे सामने आकर कैसे हमारे हिसाब किताब कर्मों का लेता है, तो कैसे उसके पीछे क्या गुह्य राज है, वो कैसे हमारा चित्त, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, और जो हमारा मतलब जो पुराना मन है, जो चित्त जिसे कहते हैं, वो कैसे उसमें कैसे हिसाब किताब रहते हैं, और कैसे हम राजयोग के द्वारा इन विकर्मों को, जो हमने 63 जन्म विकर्म किए, कैसे उसको विनाश कर सकते हैं, विनाश करके फिर हम अपने मन को स्वच्छ और शुद्ध बना सकते हैं, है ना। इस पर भी हम आज प्रकाश डालेंगे। तो आज हम चलिए 2 मिनट फिर दोबारा से हम बाबा को याद कर लेते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे और फिर अपने अगर मोबाइल स्विच ऑन है स्विच ऑफ कर देंगे अगले 45 मिनट के लिए सिर्फ, और फिर हम इस बात में गहराई से, क्योंकि ये बहुत ही गुह्य टॉपिक है पहली बार मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं, नॉर्मली ऐसे टॉपिक नहीं लिए मैंने अभी, क्योंकि इस बार मैंने कहा कुछ नया टॉपिक ले और उसको गहराई समझे, ताकि वो उसका क्या राज है, क्या सार है ना, उसको गहराई से समझते हैं, है ना, गहराई से। चलिए दो मिनट ऐसे व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट में रखें दो मिनट के लिए, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, ताकि गहराई से हम समझ सकें और फिर फॉलो भी कर सकें। ओम शांति। सबसे पहले तो हम देख कर्म क्या चीज है ना? कई बार हम सोचते हैं कर्म जो हम हाथों से करते हैं पैरों से वही कर्म, नहीं। जो भी ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे आंखों से देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, कानों से सुनना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, और हाथ पैरों से जो कर्म करते हैं शरीर के द्वारा वो तो कर्म है ही, राइट। तो कर्म खाली हाथ पैरों से किया हुआ कर्म नहीं, बोलना भी कर्म है, क्योंकि मुख को यूज कर रहे हैं, कर्मेंद्रिय को यूज कर रहे हैं, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, अच्छा पढ़ रहे हैं कि बुरा पढ़ रहे हैं, बाबा की श्रीमत पे पढ़ रहे हैं कि अपनी मनमत से कोई भी किताब उठा के पढ़ रहे हैं, सुन क्या रहे हैं हम, दुनियावी बातें सुन रहे हैं या बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा की बातें सुन रहे हैं, खा रहे हैं क्या बाबा की श्रीमत पे खा रहे हैं, बाबा की याद में खा रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं या राजसिक या तामसिक भोजन कर रहे हैं, वो भी कर्म है, राइट। अब किस आधार पे हम कर्म करते हैं? अगर मैं बाबा की याद में बाबा की श्रीमत पर देखता हूं, दूसरे को आत्मा देखता हूं, बाबा की याद में पढ़ रहा हूं, जो भी मुझे, इवन मैं अपने कोर्स की किताबें, मान लीजिए मैं मेडिकल प्रोफेशन की किताबें पढ़ता हूं, बाबा की याद में पढ़ रहा हूं, तो वो अच्छा कर्म है, राइट। मैं सुन रहा हूं कोई भी बात, इवन कोई और दूसरी बात भी सुन रहा हूं, किंतु बाबा की याद में सुन रहा हूं, या बाबा की श्रीमत में मुरली सुन रहा हूं, या बाबा की बात पे कोई और हम रू रिहान कर रहे हैं, तो वो अच्छा कर्म है। किंतु मनमत पे या परमत पे दूसरी बातें सुन रहे हैं तो वो विकर्म है। किसी को देह के रूप में देख रहे हैं, विकर्म है, राइट। मतलब विकारों के वश होकर के, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में कोई विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों में से कोई भी विकार मेरे अंदर है, मेरी बुद्धि में या मेरे मन में, उसके वश होकर के, उस विचार के वश होकर या उस संस्कार के वश होकर के मैं अगर वो कर्म करता हूं, किसी को शक की दृष्टि से देख रहा हूं, किसी को अनुमान लगा रहा हूं, किसी के प्रति चिंता के वश होके, डर के वश होके देख रहा हूं, जल्दीबाजी में या ईर्ष्या द्वेष से देखता हूं, तो वो विकर्म है, राइट। ऐसे ही बोलना, अगर मैं बाबा के शब्द बोलता हूं, बाबा की मुरली की बातें बोल रहा हूं, बाबा की बातें बोलता हूं, है ना, तो वो सुकर्म है। किंतु बाबा की श्रीमत पे बोल रहा हूं, बहुत शांति से बोलता हूं, प्यार से बोलता हूं, धीरे बोलता हूं, मीठा बोलता हूं, तो सुकर्म है। किंतु क्रोध में आके बोला या किसी को बुराई करने के लक्ष्य से बोला, किसी की ग्लानी करने के लक्ष्य से बोला, किसको नीचा दिखाने के लक्ष्य से बोला, विकर्म है, राइट। तो विकारों के वश किया हुआ कोई भी कर्म, अर्थात हम ये कहें देहभान में आके कोई भी किया हुआ कर्म, बॉडी कॉन्शियस में आके कोई कर्म करते हैं, या रोल कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं, अपने को मां समझ के बोलते हैं, बाप समझ के बोलते हैं, पति समझ के बोलते हैं, पत्नी समझ के बोलते हैं, या बॉस समझ के बोलते हैं, तो भी विकर्म है, राइट। क्योंकि उसमें ईगो ईगो भरी है ना, उसके अंदर रोल कॉन्शियसनेस भर गई ना, या मेटेरियल कॉन्शियस होके बोलते हैं ना, तो भी विकर्म है। तो हमें यह बहुत ध्यान रखना कि ये जब से द्वापर युग शुरू हुआ, तब से क्या हम, तब से, उससे पहले सत्ययुग त्रेता में आत्मा राजा थी, आत्मा राजा थी माना आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्यार, वैसा प्यार नहीं, रूहानी प्यार, स्पिरिचुअल लव था, सेल्फलेस लव था, और अतींद्रिय सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, अतींद्रिय सुख की अनुभूति से भरपूर थी, आनंद से भरपूर थी, सर्वशक्तियों से भरपूर थी। तो वो आत्मा ऐसी जब सत्व प्रधान ना सात, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, तो सातों गुणों से भरपूर थी आत्मा, तो वो आत्मा बुद्धि को भी नरिश करती थी, मन को भी नरिश करती थी और संस्कारों को भी पोषण करती थी। तो हमारी बुद्धि भी सतो प्रधान थी, हमारा मन भी सतो प्रधान था, और हमारी संस्कार माना हमारी हैबिट्स आदतें भी सतो प्रधान थी, और साथ साथ पांचों कर्मेंद्रियां भी सतो प्रधान थी, आंखें भी सतो प्रधान थी, मतलब उनसे ही आत्मा ही दिखाई देती थी, गुणों में व्यवहार करते थे, गुण ही दिखाई देते थे, अवगुण किसी दिखाई नहीं देते थे, नाक भी सतो प्रधान था, कान भी सतो प्रधान थे, मुख भी सतो प्रधान था, हमारी त्वचा भी सतो प्रधान थी, और हर शरीर की हर कर्मेंद्री सतो प्रधान थी, पूरे शरीर के आठों अंग सतो प्रधान थे, मतलब सातों गुणों से भरपूर थे। रोम रोम में ज्ञान समाया था, पवित्रता समाई थी, शांति समाई थी, रूहानी प्यार समाया था, इंद्रिय सुख आनंद और शक्तियां समाई थी। तो ये हमारा सत्युग में बस आत्मा से था वो, क्योंकि आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, सतो प्रधान को ही पावन कहते हैं। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है उस स्थिति को पावन कहते हैं। पवित्रता एक गुण है किंतु पावन एक स्थिति है, राइट। ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां, इसको हमने कहा सतो प्रधान, इससे आत्मा सातों में भरपूर है सतो प्रधान, किंतु टोटल को हम कहते हैं पावन, राइट। पावन एक स्थिति है। इसी तरह से जैसे जैसे फिर आत्मा के अंदर सातों एनर्जी कम होती गई समय के अनुसार, हमने सत्युग में 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 जन्म लिए, तो ये जन्म लेते लेते 2500 साल बीत गए, 20 जन्म लेते लेते, और उस 2500 साल में आत्मा की बैटरी आधी हो गई। हालांकि हमने कोई विकर्म नहीं किया था, किंतु विकर्म ना होने के बाद भी हमारी बैटरी आधी हो गई, आत्मा रूपी बैटरी की सातों एनर्जी आधी हो गई। 16 कला संपूर्ण थी सत्युग में शुरू में, और त्रेता का अंत आते आते 8 कला रह गई। तो अगर आप देखें ध्यान से समझे इस बात को कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, यहां पर विराजमान है लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे, दोनों ब्रेन्स हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, और उसका जो कंट्रोल रूम है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, यहां पर होता है, और उस हाइपोथैलेमस में पूरे ब्रेन का कंट्रोल रूम है, पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम ब्रेन है, दोनों ब्रेन्स हैं, और उन दोनों ब्रेन्स का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है। तो आत्मा वहां विराजमान है, अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु, जिनको मतलब एटम से भी छोटी, परमाणु से भी छोटी, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी। और आत्मा ये तो बॉडी तो तत्वों से बनी है, परमाणुओं से बनी है, एटम से बनी हुई है, किंतु आत्मा तो ऊर्जा है, आत्मा तो मैटर है ही नहीं, आत्मा तो क्या है, ऊर्जा है ना, चेतन ऊर्जा है, उससे फिर सात चैतन्य ऊर्जाएं निकलती हैं, यहां से सात चैतन्य ऊर्जा निकलती हैं, और जो कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जाती हैं और उसको पोषित करती हैं, उसको चेतन बनाती हैं। आत्मा ना हो तो क्या होगा, शरीर जड़ हो जाएगा ना, आत्मा निकल जाए तो। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे माउंट आबू में भी जब एक फॉल है, बड़ा फॉल है जो काफी ऊपर से पानी गिरता है, पानी ऊपर पहाड़ से नीचे गिरता है, उसको हम झरना कहते हैं ना, क्योंकि तो उससे बिजली नहीं बनती है, कि तो जो नर्मदा डैम है और हमारा जो डैम है सतलुज पे, जो डैम है भाखड़ा डैम है, वहां पे पानी 300 फुट से ऊपर नीचे गिरता है, नीचे हमारे वहां पर टर्बाइंस लगे होते हैं, पानी के गिरने से टर्बाइंस घूमते हैं और टर्बाइंस घूमने से बिजली पैदा होती है, और वो बिजली पैदा होकर के उसको हम डायनामो में भर लेते हैं, उसके बाद 22,000 वोल्ट की तारों से हम पावर हाउस में जाती है, पावर हाउस से 11,000 वोल्ट की तारों से हमारे शहर के पावर हाउस में आती है, और उससे फिर हमारे घर में बिजली आती है, और वहां से बिजली आकर के हमारे घरों में कितनी आती है, 220 वोल्ट की तारों से आती है, और 220 वोल्ट से हम क्या क्या करते हैं, अपने घर में क्या क्या करते हैं, हीटर चलाते हैं, खाना बनाते हैं, एसी चलता है, पंखे चलते हैं, लाइट जलती है ना, फ्रिज चलता है हमारा ना, ना जाने हर काम लगभग घर का आज कंप्यूटर भी चलते हैं, कैमरा भी चलता है, सब कुछ, मतलब लगभग घर का हर काम किससे हो रहा है आज? लाइट से होता है, राइट। इसी तरह से आत्मा यहां पे है, आत्मीय हाइपोथैलेमस वो स्थान है जहां से आत्मा की सात एनर्जी पहले मानसिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये आत्मिक ऊर्जा है, फिर आत्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा, मतलब मन में विचार पैदा करती है वो, उससे मन में विचार पैदा होते हैं और उस विचारों से फिर हमारे अंदर जो हमारी बॉडी, वो विचारों का विचार यहां केमिकल में बदल जाते हैं और केमिकल हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट अंगों पर जाते हैं और फिर हमारी बॉडी पे उसका असर होता है। तो आत्मिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में बदलती है और मानसिक ऊर्जा फिर भौतिक ऊर्जा में बदल के हमारे सारे शरीर को नरिश करती है, राइट। अब ये सात ऊर्जाएं जो है शरीर को चला रही है इस तरह से, और जब आत्मा सातों में भरपूर है तो सतो प्रधान है। जैसे मैंने बताया धीरे धीरे बैटरी चार्ज कम होती जाएगी, त्रेता का एंड आ गया, त्रेता का एंड आने पर आत्मा की ऊर्जा 50% 51% है, तब तक तो आत्मा राजा है, स्वराज्य अधिकारी, स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य है मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, पांचों कर्मेंद्रिय पर और हमारे आठों अंगों पर, सब कुछ कंट्रोल में है, पूरी प्रकृति कंट्रोल में है। क्योंकि जैसे ही आत्मा की बैटरी 50% से कम हुई, 49% होती है, तो नेक्स्ट जो पावर में है मन है। नेक्स्ट जो कौन सा है? संकल्प शक्ति है ना, तो फिर नेक्स्ट जो है मन के पास, मन के पास पावर 51% हो जाती है। और जैसी मन के पास पावर 51% होती है, आत्मा की एनर्जी 49% होती है, तो अब मन राजा बन जाता है। पहले उसके पहले कौन था राजा? आत्मा। अभी कौन राजा बन गया? मन। अब मन राजा बन गया तो मन का कनेक्शन पांचों कर्म इंद्रियों से रहता है, आंख से, नाक से, कान से, मुख से और त्वचा से, और हमारे पूरे शरीर से कनेक्शन रहता है। तो अब मन क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन बाहर की लेना शुरू करता है, आंखों से देखना शुरू करता है, बाहर की चीजें, देह को देखता है, देह के संबंधों को देखता है, प्रकृति में क्या क्या हो रहा है उसको देखता है, सुनना शुरू करता है दूसरे लोगों की बातें, गाना गाना, इसकी आवाज कैसी है, उसकी आवाज कैसी है, इसकी बहुत मीठी आवाज है ना, और वो जो है फिर मुख से टेस्ट का देखना, टेस्ट का अनुभव होने लगता है, बाहर का टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट खराब है ना, तो हर चीज में मतलब डिफ्रेंशिएट करना देह के आधार पे। तो वो जो है देह की बातें, देह, देह के संबंध और देह के स्वभाव और संस्कार और देह के पदार्थ, वो आंखों के द्वारा और कर्मेंद्र के द्वारा हमारे अंदर, हमारे आत्मा के दिल में जाने लगते हैं, कॉन्शियसनेस में एंटर करने लगते हैं। और उससे क्या होता है, अब मन बुद्धि का भी राजा बन जाती है, आत्मा का भी राजा बन गया और कर्मेंद्रियों का भी राजा बन गया और संस्कार भी उसके हिसाब से पड़ जाते हैं। फिर जो चीज मेरे को अच्छी लगती है वही खाने का दिल करेगा, जो देखने की अच्छी लगती तो वही चीज बार बार देखता रहूंगा, वही चीज मुझे बार बार देखने को चाहिए, ठीक है, जो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलता वही सुनने को चाहिए ना। पहले नहीं था, सत्य त्रेता में ऐसा नहीं था, राजा आत्मा थी तो आत्मा के हिसाब से सब कार्य चलता था गुणों के आधार पे। अब गुणों के आधार पे नहीं, अब शक्ल के आधार पे, देह और देह के संबंध के आधार पे कार्य चलने लगा। क्योंकि अब मन राजा बन गया तो मनुष्य आदमी मनुष्य बन जाता है। मनुष्य का मतलब क्या है? मन के वश में। देवता माना जहां आत्मा का राज्य है। अब तब से हमारे विकर्म होने शुरू हुए, कर्मों की गुही गति में हम जा रहे हैं ना, कर्मों की गुही गति के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी जो भी हम विकर्म करते जाते हैं, जो भी हम कर्म करते जाते हैं, अब वो कर्म जो हमने 21वें जन्म में जो कर्म किया, एक तो जन्म हमारा पहला तो ये हो गया, बल्कि उसे 22वां जन्म कहेंगे, एक जन्म तो हमारा ये संगम युग का हो गया, 20 जन्म सत्ययुग के हो गए, सत्ययुग त्रेता के हो गए, तो 22वां जन्म मतलब जो द्वापर का पहला जन्म, जब हम गिरे, तो जब हम गिरते हैं तो हमारा पहला जो विकर्म होता है वो काम विकार होता है। सबसे पहले देह दिखाई देती है और वो देह दिखाई देने से पहला काम विकार आता है, और उसके आने से क्या होता है, फिर हमारे अंदर जिसके प्रति हमें अटैचमेंट हो जाए, फिर उससे मोह पैदा होता है, और उससे फिर हमारे अंदर दूसरों के प्रति, जो व्यक्ति उसकी तरफ देखेगा या उसकी तरफ बिहेव करेगा तो वो जो है उसके प्रति क्रोध आता है। फिर जिससे संबंध हो जाता है देह का, उसके प्रति हम उसके लिए चीजें इकट्ठी करना चाहते हैं, उससे लोभ पैदा होता है, और जो उससे बच्चे पैदा होते हैं उससे मोह होता है, और फिर जो कुछ मैंने इकट्ठा किया, क्योंकि विनाश मिनी विनाश हो जाता है, किसी सबके पास एक जैसा नहीं रहता है, तो जो मेरे पास ज्यादा इकट्ठा हुआ तो मुझे फिर उसका अहंकार हो जाता है, राइट। तो इस तरह से पांचों विकार की उत्पत्ति होती है, और ये पांचों विकार देह का स्वभाव है, देह की नेचर है। पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये पांचों विकार देह की नेचर है। देह का भान आते ही पांचों विकार पैदा होने शुरू होते हैं, और फिर देह की आदत क्या है, क्योंकि विकारों में एनर्जी बहुत तेजी से खर्च होती है, कोई भी विकार होता है उसमें एनर्जी बहुत तेजी से खर्च होती है, तो जब हम एनर्जी को ऐसे खर्च करते जाते हैं तो हमारे आलस पैदा होने लगता है, हमारे विचारों की स्पीड फास्ट होने लगती है। विचारों की स्पीड जब फास्ट होती है तो आदमी जल्दी थक जाता है, सोने के समय उसको विचार चलते हैं तो नींद गहरी नहीं आती है, सपने वाली नींद आती है। सपने वाली नींद क्यों आती है, मैं उसके कारण बताता हूं। सबकॉन्शियस माइंड से आती है, जिसे चित्त कहते हैं। जो भी हम मान लीजिए मैंने मेरे किसी से संबंध बना, देह का संबंध बन गया द्वापर युग में, द्वापर के पहले जन्म में, और संबंध बना तो उससे मुझे देह का प्यार हो गया, राइट। अब वो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पे अगर मैं ऐसे करूं उसके हिसाब से तो खुश है, उस हिसाब से नहीं करो तो दुखी हो जाएगा, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, है ना। तो उसको ठीक रखने के लिए मैं क्या करता हूं कि मेरी जो अंदर जो ज्ञान पवित्रता शांत दिल में जो कॉन्शियसनेस में जो दिल की शक्ति थी, जो दिल में जिसे आत्मा का दिल कहते हैं, जो कि एकदम आत्मा का इमीडिएट होता है, एकदम नेक्स्ट होता है, तो वो दिल में ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख और आनंद था, वो तो 50% से कम हो गया था, और उसमें अब जो है देह उसमें चली जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में चला गया, जो 50% जंक खाली बची उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, देह का संबंध ही अंदर आ जाता है, जो मैंने कर्म किया देह के वश होके वो देह का भान भी काम विकार भी अंदर चला गया, क्रोध भी अंदर चला गया, लोभ भी, ये मेरे दिल में चले गई चीजें, देह के संबंध देह का स्वभाव अंदर चला गया, और फिर देह के पदार्थ भी जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके मेहनत करके कमाता हूं इकट्ठा करता हूं, वो भी देह के अंदर हमारे दिल में चले जाते हैं, कॉन्शियसनेस में उतर जाते हैं, कॉन्शियस में उतर जाते हैं, अंतरात्मा में उतर जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर की कोई चीज खो जाए ना तो क्या होता है, सारा टाइम बुद्धि उसी के बारे में लगी रहती है। आपके शरीर में कोई चोट लग जाए, थोड़ी सी ना चोट लग जाए, कोई फुंसी हो जाए कहीं पर, कुछ मुंह पे एक फुंसी यहां हो गई, तो सारा टाइम उसी के बारे में विचार चलता रहेगा। शरीर में कोई बीमारी हो जाए, सारा टाइम उसी के बारे में बुद्धि चलती रहेगी, नहीं चलती, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में चले गए। उससे क्या होता है, हमारे जो विवेक होता है, विवेक जिसे हम विजडम कहते हैं इंग्लिश में, मतलब परखने की शक्ति, वो कुंठित हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। मुझे पता है ये काम गलत हो रहा है, तो मैं बोल नहीं पाता हूं, तो मैं बोल नहीं सकता हूं, परख नहीं सकता हूं कि ठीक है गलत है, परख नहीं सकता हूं तो मेरी निर्णय करने की शक्ति खराब हो जाती है, निर्णय नहीं कर सकता हूं, निर्णय दे नहीं सकता हूं कि बच्चा मुझे पता गलत कर रहा है, मैं उसको डांट नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है गलत को डांटूंगा तो युगल नाराज हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो वो अब वो फाइल कहां जाएगी, जो मैं करना चाहता हूं किंतु कर नहीं पा रहा हूं, सामने वाला एक व्यक्ति है जो मुझे गलत मुझसे व्यवहार कर रहा है, किंतु उससे मैं इसलिए नहीं उसको कुछ वापस नहीं कह पा रहा हूं या वापस बिहेव नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उससे मुझे कुछ लेना है, वो मुझसे बड़ा है, अधिकार में बड़ा है, पावर में बड़ा है, तो मैं उसे कुछ नहीं कह पा रहा हूं, तो वो फाइल कहां जाएगी, कहना चाहता हूं किंतु कुछ करना चाहता हूं किंतु कर नहीं पा रहा हूं, वो फाइल कहां जाएगी, वो मेरे चित्त में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो 22वें जन्म में जो है, जो भी मैं काम नहीं करना चाहता कर मतलब करना चाहता था किंतु नहीं कर पाया, या मैं कहना चाहता नहीं कह पाया निर्णय नहीं कर पाया, वो फाइलें सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगती। सत्युग त्रेता में हम जो सोच एकदम सेकेंड में परखते हैं और सेकेंड में निर्णय भी कर लेते हैं, और कोई भी फाइल हमारे चित्त में नहीं जाती, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती, हमारा चित्त एकदम आनंद स्वरूप होता है, दिल में सत्य होता है, सत्य माना दिल में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद होता है, तो चित्त में आनंद होता है, शांति होती है, प्यार होता है, खुशी होती है, आनंद होता है। तीसरे कहते हैं सत्ययुग में देवी देवता जो है सत्चित आनंद स्वरूप है, उनके दिल में सत्य है, चित्त सदा आनंद स्वरूप है। द्वापर शुरू होते ही दिल में असत्य आने लगता है, देवभान आने लगता है, देह के संबंध आने लगते हैं, देह के स्वभाव संस्कार आने लगते हैं, इसलिए दिल में असत्य आने के कारण चित्त हमारा अशांत चंचल हो जाता है। तो वो जो चीजें हम नहीं करना चाहते वो सबकॉन्शियस माइंड में भरने लगती हैं, और जब हम सोने जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो नींद सपने के रूप में आती है। जब सपने के रूप में आएगी तो अगले दिन सारा दिन क्या होगा, नींद गहरी नहीं आई आपको, सपने के रूप में आई तो क्या होगा, सारा दिन नेक्स्ट डे क्या होगा, आलस आता रहेगा, राइट। वो आप एनर्जी महसूस नहीं करेंगे, ताकत महसूस नहीं करेंगे, सुस्ती आती रहेगी, कि एनर्जी कम होगी, अलबेलापन, नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। अपना दोष दिखाई नहीं देगा, दूसरे को दोष दिखाई देगा, हर बात में अपने आप को दोषी ना समझ के दूसरों में दोष निकालते रहते हैं। ये आदतें हमें कहां से शुरू होती हैं, द्वापर युग से। मैं कोई 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 जरा भी मुझे कुछ गलत कर दे, मेरे प्रति गलत करे, उसको मैं भूलता नहीं, उसको बदलने की भावना रखता हूं। कोई कुछ भी करे तो अंदर से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उसकी वजह से हम दूसरों में शक करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं। जिनके प्रति मोह होता है उनके प्रति चिंता लगी रहती है, इनको ऐसा ना हो जाए, उनको वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डर लगा रहता है अंदर से। और क्योंकि ईगो होती है, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, मेरा नाम ही सबसे आगे जाना चाहिए, उसकी वजह से आलस, उसकी वजह से जल्दीबाजी, प्रेशर महसूस करते रहते हैं, और उसी की वजह से हमारे अंदर क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है, कंपटीशन की भावना, कंपैरिजन की भावना होती रहती है। इसी राजाओं ने अपने एक महल बनाया, नेक्स्ट राजा ने उससे बड़ा महल बनाया, है ना, उसको तोड़ के बनाया, राइट। फिर उसने, हालांकि कितने लोगों की मेहनत लगी हो, कितने लोगों से बनवाया होगा, कितना, किंतु अपने कंपटीशन में, कंपैरिजन में हमें उससे आगे बढ़िया बनाना, उससे अच्छी बनाना है, और फिर दूसरा ऐसा ना बना दे उन कारीगरों के हाथ भी कटवा दिए, ताकि वो कारीगर किसी और का ऐसा ना बना दे जैसा मेरा बना, उसके हाथ भी कटवा दिए, तो कितनी क्रूरिटी बढ़ गई। तो ऐसे द्वापर युग से हमने कर्म करने शुरू किए, और हमारी जो मेमोरीज हैं, संस्कार मन में रहते हैं, और सब रिकॉर्ड रहते हैं, 84 जन्म को संस्कार रिकॉर्ड है, और वो जो संस्कार हैं, फिर जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हमारा चित्त होगा, अब चित्त में, जब चित्त में मेरी जो फ्रीक्वेंसी, मेरे विचारों की स्पीड बढ़ गई, सत्युग में मेरे एक या दो विचार ही चलते थे, और वही विचार आते थे जो सत्युग, जो होने वाला है ड्रामा में, और वही मेरे को विचार आया और वो काम हो जाता था, इसलिए मेरे संकल्प सिद्ध थे। द्वापर में क्या हुआ, क्योंकि काफी सारी बातें मैं करना चाहता था कर नहीं पाता था, बोलना चाहता था बोल नहीं पाता था, देह के संबंधों, देह के बंधनों के कारण से, लोभ के कारण से, मोह के कारण से, अहंकार के कारण से, वो सब की सब बात, उसके विचार दबाने लगा, सप्रेशन होने लगा, तो उससे विचारों की स्पीड बढ़ गई, चित्त मेरा चंचल था, स्पीड चल बढ़ गई थी, अब मेरे संकल्प 5 होने लगे पर मिनट, 10 संकल्प 1 मिनट में आने लगे, 15 संकल्प 1 मिनट में आने लगे, जब सत्य होता था एक ही संकल्प आता था और वही काम हो जाता था। अभी विचार अधिक होने लगे, काम कम होने लगे, सिद्धि खत्म हो गई, राइट। तो उससे क्या पैदा हुआ, उससे मेरे जो फाइलें क्या हुई, जो चित्त के अंदर फाइल थी, तेज फाइल, संकल्प तेज उठ रहे थे, उसी तरह से मेरे 15 विचारों वाली मेरी मेमोरीज जागृत हो गई, द्वापर युग की मेमोरीज, जो पिछला द्वापर युग था, कलप पहले वाला, उसकी मेमोरीज जागृत हो जाती, वो स्मृतियां जागृत होने से वही चीजें मैं करने लगा लोगों से भी, तो इस तरह से हमारे अंदर और विकारों की अधिकता बढ़ती गई, संस्कारों की खराबी बढ़ती गई, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम विकर्म करते गए, और वो विकर्म करते, उसी के अनुसार जन्म मिलता गया, और विकर्म किए और जन्म मिले, और विकर्म किए और जन्म मिले, उसके कारण जब एक एनर्जी बहुत कम हो गई तो हमें रोग आने लगे। पहले मन के रोग आने शुरू हुए क्योंकि आत्मा अभी पोषित नहीं कर पाती थी मन को, विचारों को, भावनाओं को, हमारी वृत्तियों को, हमारी स्मृतियों को पोषित नहीं कर पाती थी। बाहर की एनर्जी, बाहर से कुछ मिला थोड़ी देर के लिए सुख मिला, बाहर से मिला थोड़ी देर स्वाद मिला, कुछ देख के मन को शांति हुई, जंगल में जाकर थोड़ा मन को शांति मिली, किंतु अंदरूनी शांति खत्म हो चुकी थी, अंदरूनी प्यार खत्म हो चुका था, अंदर खुशी अंदर की खत्म हो चुकी थी, तो बाहर के सुखों पर आधारित हो गई थी। तो उसको ढूंढने के लिए फिर हमें एडिक्शन हो गया उसी चीज का, वो चीज खाने का, वो चीज देखने का, वो चीज छूने का, है ना, एक तरह की समझ ना, व्यसन हो गया, विकारों का भी व्यसन हो गया, है ना। उसके वश में होकर हम कर्म करते गए और हमारी एनर्जी बहुत कम होती गई। इस समय पहले तो मन के रोग आना शुरू हुए, फिर तन के रोग आने शुरू हुए। आपको पता होगा पहले सिर्फ राजाओं को रोग आते थे, बड़े बड़े रोग जो आते थे ना राजाओं को होते थे, आम प्रजा को रोग नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे राजाओं से प्रजा में भी आने लगे और फिर इन्फेक्शंस बढ़ने लगे और धीरे धीरे फिर समय आया, आज लगभग हर एक आदमी बीमार है। हर एक आदमी को शरीर की दो बीमारियां सबके पास हैं और मन की छह बीमारियां सबके पास हैं। धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बीमार ना हो, मन से भी रोगी है, तन से भी रोगी है। आप अपने आप को भी देख लीजिए, आपको भी कम से कम दो रोग तो शरीर के जुनू मिल जाएंगे अपने अंदर, और मन के छह रोग आपको अपने अंदर मिल जाएंगे। ऐसा कोई जिसको रोग कोई भी ना हो, सबको रोग है, मन भी दुखी और तन भी बीमार है सभी को। तो ये जो है इस समय की स्थिति, तो कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, और जिन आत्मा ने 84 जन्म लिए उनके ज्यादा विकर्म बने, क्योंकि हमारे अंदर कंट्रास्ट था, सुख के दिन भी और दुख के दिन भी। जिसने सुख देखा हो और बाद में गरीब बन गया हो, पहले बहुत अमीर हो पहले बहुत गरीब, एकदम गरीब हो जाए, तो क्या उसको उसको महसूस होता है? जो है ही जन्म से गरीब उसको महसूस नहीं होता है, राइट? इसलिए हमको ज्यादा महसूस होने लगा। हम एकदम सत्युग में एकदम निरोगी थे और अभी कैसे हो गए, एकदम रोगी हो गए। और अब जब बाबा आया है, शिव बाबा जब आए हैं, अगर आप देखो अब आज के समय में, इवन आप हम ब्राह्मण जीवन में भी देखें, अभी भी ज्ञान में 10 साल 20 साल चलने के बाद भी ऐसे कितने हैं जिन्होंने गुस्से को काबू कर लिया है। गुस्सा कभी गुस्सा नहीं आता, हाथ उठाओ जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, हाथ उठाओ जो कभी क्रोध नहीं आता है, एक भी हाथ नहीं उठा रहा है। सबको आता है ना, सबको आता है ना, कभी कभी आता है तो क्रोध आता है अभी भी, है ना, समझने के बाद भी। और आज 20 साल के बाद भी जब हम अपने को बैठते हैं ना, तो आत्मा ऐसे नहीं कि चलते फिरते अपने आत्मा समझते हैं, जब बैठते योग करने तो फिर बार बार याद दिलाते हैं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मतलब एक क्लास में, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपनी किताब खोल के पढ़ना शुरू करता है, पहले बोलता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे हम लोग 12वीं क्लास में ऐसे पढ़ते हैं क्या? किताब डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं ना, कि तो आज भी हम ए फॉर एप्पल, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा करते हैं ना, तब हमारा योग लगता है। ऐसा क्यों होता है? आज भी कोई हमें गलत बोले तो हमें क्रोध आ जाता है, नहीं होता? आता है ना। आज भी थोड़ा रात में नींद कम आए तो दिन में आलस आता है। कोई 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 हमारा कोई घर वाला बीमार हो जाए, घर में कोई बच्चा बीमार हो या कोई माताजी बीमार हो या अपने आपको बीमार हो तो चिंता लगती है ना, मेरा क्या होगा, है ना, डर लगता है आज भी, ना? क्यों ऐसा है? इतना ज्ञान समझने के बाद भी क्यों ऐसा है? ऐसा आप समझते हैं? क्यों ऐसा है? ज्ञान के ज्ञान समझ में आ गया है, 20 साल से मुरली सुन रहे हैं, 30 साल से मुरली सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? क्या समझते हैं? यही कर्मों की गुहे गति है ना। हमने, मैं एक बार बैठ के आज हिसाब लगा रहा था कि हम 63 जन्म में देखें एवरेज, हम अभी तो बाबा के बच्चे बन गए तो शायद दिन में एक या दो बार गुस्सा आता होगा, कि तो जब से पहले बाबा के बच्चे नहीं थे तो हमें दिन में 10 बार तो कम से कम एवरेज गुस्सा आता था, है ना। हम साल 50 साल भी लगाएं, एक एवरेज हमारी लाइफ 50 साल रही हो एक एक जन्म में, तो मैंने लगभग देखा कि 1,20,00,000 बार मैं गुस्सा किया होगा। 63 जन्म में कितनी बार गुस्सा किया हुआ? 1,20,00,000 बार गुस्सा किया हुआ। वो जितनी बार गुस्सा किया सब रिकॉर्ड है अंदर, है ना। जब जब गुस्सा के अंदर रिकॉर्ड हुआ है उसका मॉलिक्यूल बना हुआ अंदर रिकॉर्ड है, आत्मा में भी रिकॉर्ड, आत्मा में सॉफ्ट कॉपी है और ब्रेन में हार्ड कॉपी है। जैसी आत्मा सत्युग गर्भ में प्रवेश करती है तो ब्रेन में वो डाटा डाउनलोड कर देती है, ब्रेन में भी चला जाता है वो, और फिर एक्शन में आता रहता है। तो इतनी जबरदस्त फाइल हमारे अंदर भरी हुई है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर 95% हमारा जो मन है ना, वो 95% हमारे बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं। 5% मन ही हमारे कंट्रोल में है, कॉन्शियस माइंड है। आपने मुरली पढ़ी, 5% कॉन्शियस माइंड से मुरली सुनी, 5% मन में आया कि मुझे बाबा ने कहा बच्चे सारा दिन मीठा बोलना है, अपने को आत्मा समझ के दूसरों को देखना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है, श्वासोश्वास बात को याद करना है। हर श्वास बहुत वैल्यूबल है। 18 जनवरी की मुरली याद है ना सुबह की, एक एक सेकेंड हमारा बहुत बहुत वैल्यूबल है। एक एक सेकेंड एक एक वर्ष के बराबर है। हमने सुनी, दोबारा पढ़ी भी, किंतु क्या हमारा एक एक सेकेंड बाबा की याद में बीता? 18 जनवरी को भी एक एक श्वास बाबा की याद में बीता? अपने आप से पूछो, बीता? क्यों नहीं बीता? क्योंकि हमारा 5% मन ही कॉन्शियस था, हमारे कंट्रोल में था। बाकी 95% लगभग 15% मन हमारा सबकॉन्शियस था, चित्त में भरा हुआ। इस जन्म का सबकॉन्शियस इस जन्म का होता है। 80% अनकॉन्शियस माइंड जो पिछले जन्मों का पाप कर्म भरा हुआ है, हमें वो चालू रखते हैं, वो हमारे अंदर से जागृत होते। और वो किसमें? जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, पति पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, सास ससुर है, बच्चे हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले बॉस, नीचे काम करने वाले, दुकान पे काम करने वाले, घर में नौकर चाकर, वो सब के सब हमारे संबंधी है पिछले जन्मों के, उनके साथ ही हमने वो विकर्म किए हुए हैं, वही हमारे सामने है। और वो उनके साथ वो रिकॉर्डिंग्स है अंदर, उनको देख के वो आता है, किसी को देख के गुस्सा आता है, किसी को देख के मोह आता है, वो फाइल जागृत हो जाती है। किसी को देख के लोभ आता है, किसी को देख के अहंकार आता है, है ना, किसी को देख के कोई और भाव पैदा होता है, है ना, किसी को देख के चिंता पैदा हो जाती है ना, किसी को देख के शक पैदा हो जाता है, ना देखे बिना देखे भी मन में बेकार अपने आप में मेमोरी फाइल खुल जाती है, बिना देखे भी। किसी और को टीवी में देख रहे हैं, उसको देख के अपनी फाइल भी खुल जाती है, नहीं ऐसा होता? ऐसा होता नहीं होता है, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग भरी हुई है सारी। अब आप देखो, कई बार हम एग्जांपल भी देते हैं, एक आइस का वो होता है ना, आइस का हिमखंड होता है ना, पानी के अंदर डूबा होता है, उसमें 5% पार्टी बाहर होता है पानी के बाहर, 95% पानी के नीचे डूबा होता है। अगर उसके ऊपर हवा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हो, ऊपर समुद्र के ऊपर, और नीचे समुद्र के पानी की जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट हो, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा हो, तो वो पहाड़ जो हिम का जो पहाड़ है, शिलाखंड है, वो किस तरफ जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा? हम जो ऊपर से हवा चल रही है, अभी हम यहां बैठे हैं, हवा कैसे चल रही है यहां पर? रूहानी हवा चल रही है, बाबा की मुरली की हवा चल रही है। उस समय मुरली सुनते समय बड़ा हम कोशिश करते हैं, हाँ आज सारा दिन ऐसे करेंगे, आज सारा दिन ऐसे करेंगे, सारा दिन ऐसे करेंगे, है ना, लगन भी लगवाते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, मुरली सुनते सुनते प्रोग्राम पर लिख भी लेते हैं, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, है ना, वो हमने बना भी लिया यहां बैठे बैठे। रूहानी हवा चल रही है बाहर की तरफ, किंतु मन के अंदर क्या चल रहा है? अपोजिट। ये बाहर जाते याद आएगा, ये भी काम करना है, उससे मिलना है, वहां जाना है, उससे करना है, ये काम करना है, आज तो ये करना है, उसको टेलीफोन करना था, है ना, तो वो कहां गया, प्रोग्राम बनाया था, हवा अपोजिट चलनी शुरू हो गई, नहीं, जो अंदर भरा है वो चलना शुरू हो जाता है। इसलिए विक्रम विनाश करना जरूरी है। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में भरा है, वो सारा विक्रम विक्रम भरे हुए हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अच्छे सत्युक्त रहता भी भरा हुआ है, किंतु उसके ऊपर हमारी क्या लेयर जमी हुई है, द्वापर की और कलयुग की लेयर जमी हुई है। ठीक है, वो तो लास्ट में जब पूरा द्वापर और कलयुग का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा तो सत्युग की लेयर, त्रेता की लेयर चालू होगी। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था, जब त्रेता युग तक पहुंचोगे, त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंचोगे तो कर्मेंद्र की चंचलता खत्म हो जाएगी, अपने आप कर्मेंद्री जीत बन जाओगे, तब विकर्मा जीत बनोगे, तब माया जीत बनोगे, तब आप प्रकृति जीत बनोगे, तब मन जीते जगत जीत बनोगे या विकर्मा जीत बनोगे, उसके बाद कर्मातीत स्थिति आएगी। तो इसके लिए हमको बहुत बहुत गहराई की आवश्यकता है, इसके लिए हमको लगन की आवश्यकता है, इसके लिए जो यही कर्मों की गुह्य गति है कि अभी हमको बाबा ने हमको ये तो बता दिया, कर्मों की गुह्य गति बता दी कि अभी सत्युग से लेकर अब तक, द्वापर से लेकर अब तक हमने सारे सिर्फ पाप कर्म किए, विकर्मों के वश होकर कर्म किए, और उससे चुकतु करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अटेंशन रखना पड़ेगा, और सत्युग त्रेता में हमने सिर्फ अकर्म किए, माना प्रहलाद के रूप में कर्म हो गए, उसका कोई हमें फल नहीं मिला और विकर्मी नहीं थे वो, और अभी बाबा की श्रीमत पर जो कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म कहलाएंगे, और वो कर्म ही जो नए कर्म करेंगे उससे हमारे जो त्रेता के उसका द्वापर के कर्म विकर्म है, जो द्वापर कलयुग के, वो चिपते जाएंगे, कर्मों पे सारा मदार है। अब जब हमने मुरली सुनी सुबह सुबह, बाबा ने इसके लिए बताया कि बच्चे तुम्हारे किए हुए कोई भी कर्म खाली नहीं जाएगा, बाबा कोई कर्म माफ नहीं करता है, कोई विकर्म माफ नहीं करता है, और वो जिनके साथ आपने विकर्म किया सब आपके साथ हैं, आपके घर में संबंधी के रूप में, आपके पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्तों के रूप में, माता पिता सास ससुर के रूप में, नौकरों के रूप में है, और आप किसी को हटा नहीं सकते हो, किसको आप सोचो नहीं आप इसको भगा दो, इससे मैं संबंध तोड़ दूं, मेरा विकर्म खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। बैंक वाला अगर आप आए घर में आए लोन मांगने के लिए आए, किसी से आपने पैसा लिया हो और वो उसकी आप पिटाई कर दो, घर से भगा दो, तो क्या होगा, किस्त लेने के लिए आया था वो तो, है ना, और आपने उसकी गुस्सा आकर उसकी पिटाई कर दी तो आपका माफ हो जाएगा, बल्कि और चढ़ जाएगा आपके ऊपर, गुस्सा जेल में भी जाना पड़ेगा। तो आप किसी भी संबंध को जिससे आपने लिया हुआ है उसको आप टाल नहीं सकते हो, और दूसरा यह समझने की आवश्यकता है कि मेरे साथ जो भी संबंधी आया है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई बहन के रूप में, किसी रूप में भी आया है, ये मेरे अपने किए हुए कर्म है, कोई जिम्मेवार नहीं है इसके लिए, मेरे अपने किए हुए कर्म है, किसी ने मेरे को धोखा दिया, मैंने पिछले जन्म में इसको धोखा दिया है, इसलिए उसने इस जन्म में मुझे धोखा दिया। एक बार बाबा ने, याद होगा आपको, बाबा ने मुरली में कहा था, अगर कोई माता को उसका पति मारता है, इसका क्या मतलब है, पिछले जन्म में उस माता ने उस आदमी को मारा हुआ है, है ना, उसकी पिटाई की हुई है ना, नहीं? मतलब कोई भी अपने कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म को हमें हमारे ही कर्मों का फल है वो, कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, हमने दुख दिया हुआ है। मुझे हार्ट की बीमारी क्यों आई, क्योंकि मैंने किसी का हार्ट तोड़ा हुआ है, हार्ट को दुख दिया हुआ है। पेट मेरा खराब क्यों रहता है, मैंने उसका पेट खराब किया हुआ है ना, राइट? कोई भी बीमारी मुझे क्यों आती, क्योंकि मेरे अपने कर्मों का फल है। कोई संबंधी मेरे से बहुत प्यार से बात करता, मैं उसको प्यार किया हुआ है, अच्छा सुख दिया हुआ है, इसलिए मुझे सुख दे रहा है, दुख दिया हुआ मुझे दुख दे रहा है, और कितना समय दुख दे रहा है, कितना समय सुख दे रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जितना दिया उतना मुझे देगा। और कई बार मैंने एक बार इसका हिसाब लगाया था कि मान लीजिए हम कई बार कितना कितना दुख देगा, कितना सुख देगा, ये भी आप देखो। कई बार हम, हाँ जी, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा किसी का दुख, हमें दुख दिया ही जा रहा है, दुख दिया ही जा रहा है, परेशान किया ही जा रहा है व्यक्ति हमको, हम बहुत सहन कर रहे हैं, बहुत समा रहे हैं, तो भी हमको दुख मिले ही जा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा दुख। हिसाब किताब क्या है, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने 100 साल पहले, किसी व्यक्ति 100 साल पहले आपने 500 रुपये उधार लिया था, और वो व्यक्ति आपको, आप उसको देने के बगैर मर गए, शरीर छोड़ दिया। आपका दोस्त था कोई, आपने 500 रुपए कभी आपको उधार दिए, आपको आवश्यकता थी, उसने दिए, प्यार से दिए, और वो मर गया। अब 100 साल के बाद वही आपका, वही व्यक्ति आपके सामने आपका बच्चा बन के आएगा, आपके युगल बन के आएगा, कुछ ना कुछ संबंध लेकर के आएगा, और कहेगा मेरे 500 रुपए वापस करो। ठीक है, मांगेगा नहीं, किंतु आपको देने पड़ेंगे ना, तो 500 रुपए तो वापस कर देंगे, किंतु उसका ब्याज कितना हो जाता पता है आपको? 100 साल का ब्याज कितना होता है? 100 साल का ब्याज बनता है 52 करोड़ 48 लाख रुपया, 52 करोड़ 48 लाख रुपया बनता है। तो 500 रुपए देना तो सहज है, तो ब्याज कितना मुश्किल होगा देना, कितना मुश्किल होगा? 52 करोड़ दे सकते हो आप? तो 52 करोड़ 48 लाख दे दो तो माफ हो गया, तो वो आपको आदमी दुख देना बंद कर देगा। जब तक उसका पूरा नहीं करोगे तो आप कैसे उसका देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको, हमको लगता है कि कितना दुख देगा, कितना दुख देगा ये आदमी मुझे, वो दुख नहीं दे रहा है, वो अपनी हिसाब के अनुसार अपना मूलधन ले रहा है और ब्याज ले रहा है, ज्यादा नहीं ले रहा है, रेट का हिसाब है, नहीं ऐसा, एकदम एक्यूरेट रेट है, इंटरेस्ट का रेट है, उसके हिसाब से ले रहा है। अब राजयोग से क्या होता है, मूलधन तो देना पड़ता है, 500 रुपए तो वापस देना ही पड़ेगा, माफी नहीं है, 500 रुपए की माफी नहीं है, जो पाप कर्म आपने किया वो तो उसको वापचुक्तु करना ही पड़ेगा उसी देदारी के साथ साथ मिलकर के। किंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, राजयोग से क्या होगा, आप वो 52 करोड़ 48 लाख रुपए माफ करवा सकते हो। राजयोग से मूलधन माफ नहीं होता है, वो 500 रुपए का ब्याज जो 52 करोड़ 48 लाख रुपया बनता है वो माफ हो जाता है। इसलिए सूली से कांटा, इसलिए कहते हैं सूली से कांटा। किसी को आपने एक गाली दी 100 साल पहले, कितनी गाली हो गई, उसका ब्याज कितना हो गया इस जन्म में? किसको इतना सा दुख दिया इस जन्म में, कितना सारा हो गया उसका दुख? तो दुख तो आएगा वापस आपको इस जन्म में भी आएगा, किंतु मूलधन तो आएगा, ब्याज माफ हो जाएगा। राजयोग से सिर्फ ब्याज माफ होता है, मूलधन माफ नहीं होता है। इसलिए सभी को, बाबा के जितने भी बच्चे हैं, सबके शरीर में दुख आते हैं, मन में भी दुख आते हैं, कोई भी किसी को माफी नहीं मिलती है, बड़े से बड़े को माफी नहीं मिलती है। किंतु अगर हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार हर कदम उठाते हैं, आज भी था जब विनाश होगा, मुरली में था ना, आज याद होगा आपको, जो विनाश होगा तो सब मनुष्य तो मर जाएंगे, किंतु जो जो ज्ञान सुनते होंगे रोज, जो दूसरों को ज्ञान सुनाते होंगे, वो जिंदा रहेंगे। याद है वो लाइन? याद है ना वो लाइन? वो जिंदा रहेंगे और अपनी इच्छा से उनको टचिंग होगी कि सुरक्षित जगह पे पहुंच जाओ, मधुबन में आ जाएंगे, और वो फिर समय पर स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, अपनी इच्छा से सबकी मनसा सेवा करके, जितने भी दुनिया में लोग मनुष्य में दबे होंगे बिल्डिंगों के नीचे, या एटॉमिक हथियारों से, परमाणु हथियार से उनकी स्किन खराब हो जाएगी, उनको कैंसर हो जाएगा, उनकी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत ज्यादा जल जाएंगी स्किन, वो बहुत तड़फ रहे होंगे, ना मर रहे होंगे ना जी रहे होंगे, उनको मुक्ति देंगे, फरिश्ते के रूप में मुक्ति दे करके, अपना कार्य पूरा करके, फिर इच्छा से शरीर छोड़ के बाबा के साथ चले जाएंगे। दुख से शरीर नहीं छोड़ेंगे, दब के नहीं छोड़ेंगे, बीमारियों से नहीं छोड़ेंगे, बाबा की याद से छोड़ेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, एक और बड़ा सा बड़ा राज है, गुह्य राज क्या है कि बाबा का बनने के बाद, हमने 63 जन्म तो पाप कर्म किए, वो तो है ही अंदर, जमा है, रिकॉर्ड है आत्मा के अंदर, वो तो हमें विनाश करना ही है, कि तो जब बाबा के बनने के बाद हमने जो विकर्म किए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशों को जो भी काम किए, बाबा की श्रीमत को भूल करके वो जो कर्म किए, उसका 100 गुना का हिसाब बन गया, उसका 100 गुना, पहले का 63 जन्म 63 गुना 63 जन्म का, और अभी जो इस जन्म में हमने वाले 30 साल से हम ज्ञान में हैं, 20 साल से, 10 साल से ज्ञान में हैं, और अभी हम मनमत पे चलते हैं, दूसरों की मत पे चलते हैं, तो वो जो कर्म करते हैं उसका 100 गुना हो गया। तो बाबा का बनने के बाद जो विकर्म किए वो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और वो क्योंकि हमको याद रहते हैं, सिर्फ दिल खाती है हमने बाबा का बनने के बाद भी ऐसा किया। और अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी माना अभी हमने मान ले 84 जन्म में हम आ गए, तो 84 जन्म में आ गए, हर जन्म में हमारी 3 स्टेज होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन बुढ़ापे में पाप नहीं करते ज्यादा, जवानी में ज्यादा पाप करते हैं, काम, क्रोध, लोमो, अहंकार सब कुछ जवानी में ज्यादा होता है, 15 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक होता है। 15 से 55 के बीच में 40 साल हम करते हैं, पहले के 15 साल रिलेटिवली ठीक रहते हैं और आखिरी के 15 साल भी ठीक ठीक रहते हैं, उसमें इतने विकर्म नहीं होते। तो जब हम रिटर्न जर्नी माना, हमने 84 जन्म का विकर्म विनाश कर लिया, फिर 83वां जन्म शुरू हो जाता है। 83वां जन्म का जो जवानी, जो बुढ़ापा होगा, उसमें कम पाप किए हैं। तो हमें बाबा ने 4 बातें बताई हैं, 4 नियम बताए हैं कि बच्चे 4 नियम आप फॉलो करो। 4 नियम है तो आपके विक्रम विनाश होते जाएंगे। और 4 परहेज बताएं। 4 नियम कौन से? कि बाबा ने कहा बच्चे तुम 4 बजे उठना, 4:45 उठना और 4 से 5 मुझे याद करना। तो मैं स्पेशली जो आपने पाप किए हैं 63 जन्म में, उन वो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अगर तुम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा मुझ बाप को परमधाम घर में याद करोगे, बिंदु बन बिंदु बाप को निराकार वतन में, मूल वतन में याद करोगे, तो आपके विक्रम विनाश होंगे। 0 स्टेज में पहुंच जाओगे तो आपके विक्रम विनाश होंगे। मतलब जो आपने जो गलत काम किए थे, जो रिकॉर्ड हैं आत्मा के अंदर और दिमाग के अंदर, वो फाइलें डिलीट होती जाएंगी। कितनी बार किए मैंने पता है? गुस्सा कितनी बार किया? 1 करोड़ 20 लाख बार किया है ना? तो कितनी बार डिलीट करना पड़ेगा? ये नहीं कि एक बार बटन दबाया सारा खत्म हो जाएगा, नहीं, 1 करोड़ 20 लाख बार हमको डिलीट करना पड़ेगा। ये गुस्सा खत्म, मतलब 1 करोड़ 20 लाख बार हमको गुस्सा खत्म करना पड़ेगा, है ना? नहीं, हर बार का गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं हम तो इतने साल से योग कर रहे हैं तो भी गुस्सा आ रहा है, तो भी खत्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने बहुत किया हुआ है। ऐसे कोई भी विकार का हमने बहुत बार प्रयोग किया हुआ है, मोह का, लोभ का, काम विकार का बहुत प्रयोग किया हुआ है, तो अथा है, अथा माना बहुत सारा है ना? तो हमको रोज करना पड़ेगा। तो अगर हम 45 मिनट बाबा को याद करेंगे तो हमारा उसमें विक्रम विनाश होगा। बाबा उसमें वरदानी मुहूर्त बन के आते हैं। उसमें हम अगर सही ढंग से मुंह धो के ब्रश करके बैठ जाएं, फ्रेश होके बैठे, है ना, आलस में नहीं। जैसे हम कहीं किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो क्या करके जाते हैं? मुंह धो के क्रीम करके, क्रीम लगा के और कंघा वंगा करके सब अच्छे से ना, कपड़े ठीक से पहन के जाते हैं। ऐसे होकर के जैसे बाबा से सबसे बड़ी हस्ती कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सेकंड ब्रह्मा बाबा। तो हम कंबाइंड से मिलने जा रहे हैं, उस भाव से आकर के बैठे और ABCD को, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा, एक एक संबंध से बाप को याद करें, उस अनुभूति को अनुभव करें, तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे मैं फिर 7 से 8 तुमको 1 घंटा पढ़ाता हूं, 700 करोड़ लोगों की सब समस्याओं का समाधान उस मुरली में देता हूं, 4 सब्जेक्ट उसके अंदर दे देता हूं। तो वो मुरली तुमको सेंटर में जाके सुननी है, क्योंकि सेंटर में वो वातावरण है, वायुमंडल, इसमें मुरली तुम्हारे अंदर जाएगी। घर में बैठ के मुरली सुनोगे पढ़ोगे अंदर नहीं जाएगी। जब कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? कहां करते हैं? सड़क पे खड़े खड़े रिकॉर्डिंग हो जाती है क्या? नहीं, उसके लिए स्पेशल स्टूडियो बनाए जाते हैं, डबिंग रूम होते हैं, साउंड प्रूफ रूम होते हैं, वहां पे रिकॉर्डिंग की जाती है। तो हमें ऐसे ही जो वो जो बाबा का सेंटर है वो रिकॉर्डिंग रूम है, वहां वो वायुमंडल है। कोई भी बहन मुरली सुनाए, कोई भी भाई मुरली सुनाए, वहां पर वहां रिकॉर्ड होता है। तो घर में भले आप मुरली पढ़ लो, इंटरनेट पे मुरली सुनना कोई इंटरनेट पे मुरली सुनना कोई सुननी नहीं, टीवी पे मुरली सुनना कोई मुरली सुनना नहीं है। आपको अगर भूख लगी हो, आप इंटरनेट पे खाने की प्लेट दिखाएं तो आपका पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा। सेंटर पे जब बाबा के घर में आके मुरली सुनते हैं तो बाबा से शक्ति भी मिलती है, वो शक्ति भी आपको मिलती है जिससे वो मुरली धारण हो जाए। क्योंकि मुरली का एक एक पॉइंट में चार बातें होती हैं, मुरली का हर पॉइंट गुह्य होता है, बहुत गहराई उसमें होती है, हर महावाक्य में रहस्य होता है, उस पर सस्पेंस होता है, मतलब गोपनीय होता है, बहुत सारे सीक्रेट उसके अंदर होते हैं और अमूल्य होता है। तो हर महावाक्य के अंदर इतना चार बातें तो भरी होती हैं, वो रिकॉर्ड होने के लिए ओरिजिनली रिकॉर्ड हो वो सेंटर पे हो सकती है, घर में नहीं। मेरा तो अनुभव है 30 साल का, और 30 साल हालांकि मैं बहुत बिजी रहा हूं एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट, बहुत बिजी रहा हूं। आपको पता है डॉक्टर कितनी ड्यूटी होती है ना, कितने हॉस्पिटल में उसको जाना पड़ता है, सीरियस पेशेंट एडमिट होते हैं, किंतु मैंने तब से लेकर के आज तक कभी मुरली मिस नहीं की है सेंटर पे। दिल्ली में मेरा सेंटर 8 किलोमीटर दूर था, कितनी दूर था, 8 किलोमीटर दूर था, तो भी मैं कभी मुरली मिस नहीं किया। 8 किलोमीटर जाना पड़ता था मुझे, 8 किलोमीटर जाना आना, क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे पता थी कि किसकी मुरली है, भगवान की मुरली है। मुरली मेरे पास होती थी राइट टाइप, मतलब किंतु उसके बाद भी मैं सेंटर पे जाता था, वो जो 1 घंटा मुझे सेंटर पे मिलता था उससे सारा दिन मेरा शांति से बीतता था। प्रैक्टिकल लाइफ मेरे कम से कम 16 घंटा काम करता था मैं दिल्ली में, किंतु 1 घंटा बाबा को जरूर देता था। तो आप इस बात को समझ लो, अगर आप चाहते हो आपके विकर्म विनाश हो जाए, 52 करोड़ का ब्याज माफ हो जाए, 500 रुपए पे ये रेट है ना, 500 रुपए पे रेट कितना है, 52 करोड़ रुपए, 50 करोड़ समझ लगा लो, चलो 2 करोड़ माफ भी कर देते हैं वैसे, 500 रुपए का रेट 50 करोड़ है 100 साल पहले का, है ना, 200 साल हो गए तो और ज्यादा हो जाएगा, इतना ब्याज माफ हो जाए तो ये करना जरूरी है। आप ये आज से सोचना बंद कर दो, इंटरनेट पे मुरली सुन लेंगे, वो हमारे मोबाइल पे आती है वो मुरली पढ़ लेंगे, हमारा काम हो गया, नहीं, बाबा के लिए प्रायोरिटी बनाओ। जिसको मुरली से प्यार है उसको मुरलीधर से प्यार है, जिसको मुरली से प्यार नहीं उसको मुरलीधर से प्यार नहीं। तो ये दूसरा नियम है, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे। तीसरी बात, तीसरा जो नियम है कि जो बाबा ने मुरली बताया सारा दिन उसको अटेंशन रखो, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज क्या, मुझे करना है, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, उसमें लोकलाज छोड़ के भी मुझे करना है, भले लोक मर्यादा कुछ भी कहे, घर वाले 1000 मना करें, मुझे करना है, मुझे वही करना जो बाबा ने कहा, दुनिया वाले 1000 पीछे, सारी दुनिया मेरे अपोजिट हो जाए, घर वाले भी अलग हो जाएं, सबके सब मेरे खिलाफत करना शुरू कर देंगे, तो बाबा मेरे साथ रहे काफी है, जीत मेरी ही होगी, ये पक्का करने की आवश्यकता है, अटेंशन रखने की आवश्यकता है। तो मुरली जो है, मैं तो हमेशा पहले जब मेरे को मुरली नहीं मिलती थी मैं जेब में लिख के रखता था, जेब में हमेशा मुरली रहती थी ना, मुरली के पॉइंट्स, और जब से मुझे मुरली मिलने लग रही है तो मेरी मुरली कहां रहती है पता है आपको, मेरे दिल के पास है ना, ये देखो। तो इस मुरली को जितनी बार चाहो पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, सारी मुरली नहीं, एक लाइन तो पढ़ो ना, 50 बार पढ़ो, 60 बार पढ़ो, 100 बार, एक एक लाइन पढ़ो, वरदान पढ़ो, स्लोगन पढ़ो, मीठे बच्चे पढ़ो, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा की डायरेक्शन क्या है, ये सारा दिन अटेंशन रहे, मुझे ऐसा ही करना जो बाबा ने कहा, मुझे वो नहीं करना जो दुनिया वाले कहते हैं, मुझे जो बाबा ने कहा है सत्य यही है, बाकी सब झूठ है। जब हम ऐसी अटेंशन रखेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, तब हमारा अमृत वेला योग लगेगा, और सोने के पहले 4 बातें करना जरूरी है। ये तो सारा दिन करना है, मुरली का बार बार मनन करना, रिवाइज करना, इसको रियलाइज करना, अनुभव करना, बाबा ने आज क्या कहा, मुझे ऐसा बनना ही है, मनन चिंतन मंथन करना, सिमरण करना। सिमरण करने का मतलब क्या है, सिमरण करने का जो मंथन से बात निकली उसको कार्य में लगाना, सिमर सिमर सुख पाओ। और फिर उसके बाद सोने के समय क्या करना है, 9:30-10 तक सो जाना चाहिए। सोने के पहले क्या करना होता है, पहले एक लेटर लिखना चाहिए बाबा को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है, हमारे अंदर रिकॉर्डिंग भरी हुई है, कितना भी हम कोशिश करें तो भी हमसे गलतियां होंगी, देखने में गलती होगी, सुनने में गलती होगी, बोलने में गलती होगी, हाथों पैरों से कर्म करने में, क्योंकि आदत पड़ी है ना, कितना भी टेंशन, गलतियां होंगने वाली होने वाली हैं, सच्चाई से बाबा को लिखो, बाबा आज मुझसे ये गलती हो गई, बाबा मुझसे ये नियम आज टूट गया, बाबा मुझसे आज ये हो गया। गलतियां सबसे होती हैं। बाबा ने कहा माया किसी को छोड़ती नहीं है, कल की परसों की मुरली में था, माया किसी को छोड़ती नहीं है, बड़े से बड़े महारथी को भी गिराती है। कोई महारथी ऐसा नहीं है, कोई बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा छोटा ऐसा नहीं जिसको जिससे गलतियां ना होती हों। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, किंतु बाबा को सच्चाई से बताओ, बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, बाबा मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि मेरे कर्मों के लिए कोई दोषी नहीं है, मेरे कर्मों के लिए दोषी मैं हूं, मेरे दुख के लिए कोई दोषी नहीं है, मेरे सब दुखों के लिए दोषी मैं हूं। किसी को दोषी ठहराना, इसके कारण मुझे दुख हो रहा है, इसके कारण मुझे दुख हो रहा है, इसके कारण मुझे दुख हो रहा है, ये भी पाप है। किसी को ऐसा बोलना कि ये मेरे को दुख दे रहा है, ये मेरे को दुख दे रही है, नहीं, ये भी बड़ा बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मेरे अपने कर्म मुझे दुख दे रहे हैं, इसको अंदर से गहरे से रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। और हमें गहराई से लिखना चाहिए फिर बाबा को, बाबा आज मुझसे, मैं 5 बजे था ना योग के बाद, मुझे ऐसा विचार आ गया, मेरे को उसने ऐसा बोला, मुझे ऐसा संकल्प आ गया, मैंने ऐसा बोल दिया, वापस बोल दिया, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया। तो लिखे सच्चाई से, बाबा फिर मैंने ये खाने में था ना, खाने में ये था ना, मैंने स्वाद के बस ज्यादा खा लिया, मैं आपकी याद भूल गया था खाते खाते, बाबा की याद में खाया नहीं खाया, क्योंकि श्रीमत तो मिली है, डायरेक्शन मिली है, कैसे खाना है हमको। बाबा वॉकिंग करते करते मैं बातें कर रहा था, मुझे बातें नहीं करनी थी, बाबा की याद में सैर करनी थी, मैं तो भूल गया, उस समय बातें करनी शुरू कर दी। लिखो एक एक बात, कहां कहां गलती की लिखो, नीचे साइन करो। और फिर बाबा का एक हॉटलाइन फैक्स नंबर है, मैं आपको दे देता हूं, उसका हॉटलाइन फैक्स नंबर है। आपको पता है जब 1-0 डायल करते हैं तो हम स्टेट के बाहर जाते हैं, राज्य के बाहर चले जाते हैं, 2-0 डायल करें तो कंट्री के बाहर, और 3-0 डायल करें तो विश्व के बाहर। नहीं तो मैं आत्मा 0, तो बाबा का हॉटलाइन नंबर है, टेलीफोन नंबर भी है, फैक्स नंबर भी यही है, उसका नंबर है 000, है ना, 3-0 है, मैं आत्मा 0, मेरा बाप भी 0, और जो बीत गया सारे दिन में उसको 0 से गुना कर दो, वो भी 0 हो गया, ठीक है। तो लेटर बाबा के पास पहुंच जाएगा, बाबा के पास पहुंच गया तो लेटर काम पूरा हो गया, फिर लेटर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, फिर अपना चार्ट भरो, याद का चार्ट, कितने मिनट मैंने याद किया सारे दिन में, लिखो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, देखो कितने मिनट मेरा 24 घंटे में कितना मिनट हुआ, 12 घंटे में कितना मिनट हुआ, वो टोटल कर लो, ठीक है। आज मैंने गलत काम तो कोई नहीं किया, वो तो आपने लेटर में लिख के बाबा को दे दिया। फिर उसका पूरी मुरली पढ़ो, सोने के पहले मुरली जरूर पढ़ो, 10 मिनट लगते हैं मुरली पढ़ने, पूरी मुरली पढ़ने में, मैं हमने नियम बनाया कि सोने के पहले जरूर मुरली पढ़ेंगे, कितना भी लेट हो जाए तो मुरली हम जरूर पढ़ेंगे, पूरी मुरली पढ़ने से बड़ा मजा आता है, पूरी मुरली 10 मिनट लगते हैं पूरी मुरली पढ़ने में, क्योंकि हमने दिन में कई बार रिवाइज की होती है ना, 10 मिनट में मुरली हो जाती है, और फिर 5 मिनट बाबा को याद करके बाबा की गोद में सोचो। ये चार बातें जो करके सोता है ना, पहले लेटर, फिर चार्ट, फिर मुरली, और उसके बाद बाबा को याद, उसको नींद एकदम गहरी आती है। और फिर टाइम दे दो अपने आप को, बाबा 3:30 उठा देना, आपकी एक्यूरेट 3:30 आपकी आंख खुल जाएगी, बिना माइक के, बिना म्यूजिक, बिना उसके, आपको कोई अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आंख खुलेगी, और उठते ही आपको लगन लगेगी बाबा को याद करो, बाबा को उठते गुड मॉर्निंग करके, और फिर बैठ जाओ, मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठ जाओ, और थोड़ी देर सूक्ष्म वातावरण में चले जाओ, परमधाम में जाके फिर विकर्ण विनाश करो। तो ये जो तरीका है, चार बातें, चार नियम है सच्चे ब्राह्मण के, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, सारा दिन मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करो मुरली का, और सोने के पहले चार बातें करो, लेटर, चार्ट, मुरली, और फिर नींद, बाबा की याद में सो जाओ। तो ये चार नियम है, कि तो चार नियम के साथ चार परहेज भी हैं। वो चार परहेज क्या है? पहला, पवित्रता। पवित्रता ब्रह्मचर्य तो पवित्रता है, वो तो हमने स्थूल पवित्रता की, किंतु तो उससे भी बड़ी पवित्रता हमें क्या करनी है, वो तो हमने कर ली, किंतु तो उससे बड़ी पवित्रता हमें क्या करनी है, किसी के प्रति लगाव रखना, वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, झुकाव रखना, उसके प्रभाव में रहना, किसी व्यक्ति के प्रभाव में रहना, टकराव रखना, यह सबसे बड़ी अपवित्रता है। सुना आपने? लगाव भी अपवित्रता है, झुकाव भी अपवित्रता है। ब्राह्मणों की बात मैं कर रहा हूं, किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है, और किसी से टकराव रखना मन में, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए गलत सोचता है, मेरे गलत बोलता है, उससे टकराव, उससे मैं बात नहीं करूंगा, ये भी अपवित्रता है। किसी बात में भी किसी भी व्यक्ति को क्या क्यों कैसे करना, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों ब्राह्मणों के भी ऐसा क्यों करता है, टीचरों के भी ऐसा करते हैं क्या, ये क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है। ठीक है, क्योंकि ड्रामा के अंदर बना हुआ है और बाबा इसका डायरेक्टर है, मतलब हम बाबा के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, ड्रामा में उसका पार्ट है, और उसको हम क्वेश्चन रेज करना माना, ये भी पवित्रता, अपवित्रता हुई कि नहीं हुई, व्यर्थ हुआ ना, अपवित्रता है। तो ये इतनी जो कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, किसी को परिवर्तन करने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये ऐसा बदल जाए ना तो अच्छा हो जाएगा, मेरे को सुख हो जाएगा, इसको ऐसा कर लेना तो मुझे सुख हो जाएगा, यज्ञ के हमारे बाबा की जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाएगी, ऐसा हो जाता नहीं, करण करावनार शिव बाबा है, वो अपने आप करा लेगा, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। तो इतनी जब पवित्रता की डिग्री होगी तब मेरा बाबा सहयोग लगेगा, तब अमृत वेल मेरा अच्छा होगा, तब मुरली मेरे अंदर रिकॉर्ड होगी, तब सारा दिन अटेंशन रहेगा बाबा की याद का मुरली पे, और तभी मैं सच्चाई से चार्ट लेटर लिख पाऊंगा, सच्चाई से चार्ट भर पाऊंगा, तभी मुरली पढ़ने का समय मिलेगा, तो मुरली पढ़ने का समय रात को नहीं मिलेगा, थकावट लगेगी, सो जाओ कोई बात नहीं बाबा, गुड नाइट, है ना, सो जाओ, बस आलस आएगा। तो ये ध्यान रखें कि पवित्रता सबसे बड़ा गुण है, पवित्रता के बगैर ब्राह्मण जीवन नहीं। दूसरी बात, शुद्ध सात्विक भोजन, भोजन कौन सा खाना है, सात्विक भोजन, सात गुणों को बढ़ाने वाला, अंकुरित खाओ, दलिया खाओ, रोटी सब्जी खाओ, दूध पियो, है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये जो हम पीते हैं, खाते हैं ना, पराठा पकोड़ा समोसा खाते हैं ना, मिठाइयां खाते हैं, ये त्रासिक भोजन आलस पैदा करता है। तामसिक भोजन, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत सारी चाय कॉफी पीते हैं, है ना, लहसुन प्याज खाते हैं कभी, हमारे तो बाबा के बच्चे नहीं खाते, नॉन वेज खाते हैं कुछ लोग, ये तामसिक भोजन उत्तेजना पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है, तो इसलिए कभी ऐसा भोजन ना खाओ। और अगर आप पराठा पकौड़ा समोसा खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे आलस पैदा होगा, योग लगेगा नहीं। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद है हमारा सत्संग, सत्संग माने बाबा और मुरली, दो चीज, इसका संग करने का और किसी चीज का संग नहीं, कुछ और मैगजीन पढ़ना, कुछ और किताबें पढ़ना कभी नहीं पढ़ो, क्योंकि बुद्धि में डालना अभी हम बाबा के अलावा कुछ बुद्धि में डालना नहीं चाहिए। चौथा, दैवी गुणों की धारणा, स्वच्छता, मन भी स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो, बुद्धि भी शुद्ध रखो, संग भी शुद्ध रखो, और सत्यता, सत्यता माना सच बोलना नहीं है, सत्यता माना मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, उसकी उस फीलिंग में सदा रहना, अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप और अंतिम फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहकर हर कर्म करना, बोलना, इसे कहते हैं सत्यता। निर्भयता, निर्भयता माना मेरी जो दो आंखें ना, कौन सी आंखें मेरी, मन की, आत्मा की कौन सी आंखें हैं, बुद्धि और मन, बुद्धि कहां लगी रहे, शांति धाम में लगी रहे, और मन कहां लगा रहे, सुख धाम में लगा रहे, ये वाली आंख नहीं, जिसकी बुद्धि सदा शांति धाम में लगी रहेगी और मन सदा सुख धाम में लग रहा है, वो हमेशा निर्भय फील करेगा, डरे उसको डर नहीं लगेगा। अंतर्मुखता, अंतर्मुखता में अंदर से अंदर देखता रहे, मैं कौन हूं, देखो ना देखे, बाहर ना देखे, एकांतवासी, एक के अंत में खोया रहे, शिव बाबा की याद में खोया रहे, उसी में एकाग्र रहे बुद्धि, कोई भी दुख सुख आए एक उसकी याद आए, एक नामी। और फिर सरलता, ब्राह्मण सदा सरल स्वभाव होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा स्वभाव ना हो। नम्रता, ब्राह्मण की निशानी नम्रता, ईगो ब्राह्मण कभी नहीं होती, ब्राह्मण में कभी ईगो नहीं होती है, नम्रता। उदारता, दूसरों गलती देख के उनको माफ कर दे, ये ना कि उसकी गलतियों को बखान करता है, उसने ऐसा किया, कभी नहीं बोलना चाहिए। और फिर मधुरता, मीठा बोलना चाहिए, हर बात में पेशेंस, धीरज रखो, हर बात में रमणीकता रखो, सहनशीलता, ब्राह्मण माना सहनशील, सहन करके समाने वाला, दृढ़ता, जो बाबा ने कहा मुझे वो करना ही है, संतुष्ट रहने वाला और मुस्कुराने वाला, आज्ञाकारी माना सदा पवित्र और निरंतर योगी भव, वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ईमानदार माना हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रीमत पे करने वाला। और फरमान बरदार बाबा का फरमान क्या है? देह, देह के सर्व संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो तुम पावन सत्व प्रधान बन जाओगे, और तब मेरे से आपका मिलन होगा, तब हम बाबा के साथ जा सकेंगे। तो अगर इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, ये चार नियम और चार मर्यादाओं को फॉलो करेंगे, तो हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। इनको बिल्कुल लगन से करना है, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे, हमारा ब्याज खत्म होता जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले खत्म होगा, फिर हमारा अनकॉन्शियस माइंड की हमारी सारी बातें खत्म होती जाएंगी। और हर जन्म में तीन फेज आएंगी, ऐसा होगा आप देखेंगे। कुछ दिन तो आपका अमृत वेला बहुत अच्छा लग रहा है, मुरली उसने बहुत मजा आ रहा है, सारा दिन अटेंशन भी रहता है, और फिर शाम को लेटर भी लिख लेते हो, चार्ट भी भर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, अच्छा रहता है, भोजन भी बहुत बाबा की याद में खा लेते हो। किंतु फिर ऐसा समय भी आएगा, जवानी का टाइम आता है जिस जन्म में, हर जन्म में जवानी का टाइम आएगा, उसमें आपका अमृत वेला योग लगाते भी योग लगेगा नहीं, मुरली अंदर समझ नहीं आएगी, सारा दिन बुद्धि इधर उधर जाएगी, और सोने के समय मजा नहीं आएगा मुरली पढ़ने का, है ना, चार्ट लिखने मजा नहीं आएगा, दिल करेगा छोड़ो छोड़ो इसको, तो भी हमको करना है, क्योंकि यही हमारी ड्रेस है, ये फायर प्रूफ ड्रेस है, माया प्रूफ ड्रेस है, ये चार नियमों की और चार मर्यादाओं की। कुछ भी हो जाए, मुझे इन चार नियम और चार मर्यादाओं परहेज पे पक्का रहना है, तो हमारे विक्रम विनाश होते होते एक दिन हम 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे, और हमारी अपने आप कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएंगी, हम कर्मेंद्रजीत बन जाएंगे, विक्रमाजीत बन जाएंगे, और फिर कर्मातीत बन जाएंगे, और फिर अव्यक्त फरिश्ता बनके बाबा की याद में बाबा के साथ कहां जाएंगे, शांति धाम जाएंगे, और फिर वापस सुख धाम में आ जाएंगे। ओम शांति।
फरिश्तों के जहान में
की याद ने दुनिया को भुला दिया। छिपा है जो दिखा दिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को